गुरु भक्ति योग ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को साहेबभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेमपूर्ण एवं विवेकपूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। वेद भी ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक गुरु की प्रशस्ति गाना नहीं चूकते। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान हैं। संसार सागर को पार कराने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। संत एकनाथ जी महाराज सद्गुरु की अनंत महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, हे सद्गुरु, मेरा तुम्हें प्रणाम है। तुम स्वयं ही क्षीर सागर हो। तुम्हारे ज्ञान रूपी चंद्रमा के उदय होने से प्रत्येक जीव प्रसन्न हो उठा है। जिस चंद्रमा की चांदनी से हृदय आकाश को प्रकाशित कर घनघोर अज्ञान रूपी अंधकार के त्रिविध ताप दूर किए, जिस चंद्रमा की किरणें शिष्य या सत्संगी रूपी त्रिशिकांत चकुरों के लिए स्वानंदामृत का श्राव कर उन्हें सहज ही तृप्त करती है, वह तुम्हारा ज्ञान रूपी चंद्रमा है। अविद्या रूपी अंधेरे में अंधकार रूपी बंधनों से जीवों के जो देह रूपी कमल मुरझाए रहते हैं, वे जिसके किरण रूपी ज्ञान से अत्यंत आनंदित होते हैं, जिस चंद्रमा को देखते ही जीव के अंतःकरण में आनंद होता है और जो अहंकार रूपी चंद्रकांत मणि का तत्काल विलय कर देता है, वह तुम्हारा ज्ञान रूपी चंद्रमा है। अपने पुत्र को पूर्णिमा के काल में पूर्णत्व से पूर्ण वृद्धि मिली, यह देखकर क्षीर सागर में ज्वार आता है। फिर भी उसकी गुरु गौरव की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। अद्वैय अनुभव के कारण अंतःकरण में आत्मानंद बढ़ता ही रहता है। सद्गुरु रूपी क्षीर सागर अत्यंत गहरा है। उसकी ओर आदर पूर्वक देखने से उस पर हिलोरे मारने वाली वेदांत रूपी लहरों में शब्द रूपी ज्ञान रत्न दृष्टिगोचर होते हैं। उसमें विश्वास रूपी मंदराचल पर्वत तथा वैराग्य रूपी वासुकी के रूप में मथनी को बांधने वाले डोर, इनकी सहायता से निज धैर्य रूपी देव दानव सम समान भाव से क्षीर सागर का मंथन करने के लिए तत्पर रहते हैं। उस मंथन की पहली ही खलखलाहट में लय विक्षेप आदि हलाहल उत्पन्न हुए और विवेक रूपी नीलकंठ ने आत्मदृष्टि से उन्हें अपने ही गले में निकल लिया यानी धारण कर लिया। फिर अभ्यास की पुनरावृत्ति से सारे कर्मों को विश्राम मिला। उस समय श्रीपति जिसके वश हुए वह आत्म शांति रूपी लक्ष्मी प्रकट हुई। फिर वह ब्रह्मरस और भ्रमरस इन दोनों से भरा हुआ अमृत कलश जो देव दानवों को अत्यंत प्रिय है वह धीरे धीरे उस मंथन से बाहर निकला। उसका बंटवारा करने के लिए श्री हरि ने मोहिनी रूप लिया और अहंकार रूपी राहु का शिरच्छेद कर दिया तथा देवताओं को तृप्त किया। वह वृत्ति रूपी मोहिनी तत्काल अपना रूप बदल कर नारायण स्वरूप हो गई। पूर्व की देह बुद्धि उसमें नहीं रही। क्षीर सागर के वे नारायण जिस प्रकार आज भी स्वयं समाधि रूप शेष शैया पर सुखपूर्वक अत्यंत संतुष्ट हो अभी तक शयन कर रहे हैं उस प्रकार सद्गुरु ज्ञान रूपी समुद्र है। नारायण आदि अनेक अवतार सचमुच जिनके कारण उत्पन्न होते हैं ऐसे सद्गुरु का पार वेदों को भी समझ में नहीं आता। जिसके सुंदर ज्ञान रूपी रत्न शंकर और विष्णु के गले में तथा मुकुट पर शोभायमान होते हैं और जिसका वेद पाठों ने तथा महान कवियों ने वर्णन किया है ऐसे अत्यंत गंभीर सुख सागर अनंत रूपा अपारा तुम्हारे परे की वस्तु को कौन जानता है। विचार की दृष्टि से भी वह नहीं दिखाई देता। वेद भी उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते तो यह मेरी वाणी उसका वर्णन किस प्रकार कर सकेगी। हे ओमकार स्वरूपा हे विश्व रूपा सद्गुरु राया तुम्हें नमस्कार है। तुम ज्ञान स्वरूप हो और विश्व के बाहर भीतर तुम ही हो। यदि तुम्हारे स्वरूप का विचार किया जाए तो तुम निर्गुण होते हुए भी अव्यय यानी अक्षय हो। ये जो साक्षात चराचर है वे तुम्हारे निर्गुण स्वरूप के घटक है। जीव और शिव तुम्हारी माया है। अद्वैत यही तुम्हारा सच्चा वैभव है। घी की गुड़िया साकार दिखाई देती है लेकिन केवल घी के रूप में ही उसे देखने पर वह निराकार ही है। उसी प्रकार तुम अविनाशी और निर्विकार होकर जगदाकार भासित होते हो। संसार का यह जो रूप दिखाई देता है वह तुम्हारा ही स्वरूप है और तुम्हारे अंग को देखा जाए तो तुम अनंग हो लेकिन उस अनंग का अर्थात काम का तुमको स्पर्श नहीं है। जो कुछ दृष्टि को दिखाई देता है वह तुम नहीं हो। आत्मा जिससे ब्रह्म दिखाई देता है वह तुम हो। होना न होना तुम्हारे पास नहीं है। तुम संसार के ऐसे सद्गुरु हो। शब्द तुमसे दूर है लेकिन शब्द के अंतर बाह्य तुम ही हो। चराचर में बोलने वाले तुम हो और वेद शास्त्रों के वेत्ता भी तुम ही हो। जिस प्रकार गन्ने के भीतर बाहर मधुरता रहती है लेकिन मधुरता में गन्ना नहीं होता तुम्हारा और वेद का नाता भी वैसा ही है। वेदों के वक्ता तुम ही हो और वेदों में तुम्हारा ही प्रतिपादन किया है। इसलिए हे मेरे गुरु राया, तुम निःशब्द में ही रहते हो, इसलिए अंत में वेदों को भी तुम्हारा आकलन नहीं हो पाता। ऐसे मेरे सद्गुरु भगवान को मेरा प्रणाम है।